नारायण 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 नारायण। अब बोलो सब।
महाराज जी संशय है, आप कहते हैं कि कर्ण निरपेक्ष है, तो कर्ण निरपेक्ष का तो समर्थन अवस्थ करता है। लजंग विदु लजंग स्पृशंति न विदु मनो बुद्धिन्द्रिया सव अंतर बहिश्च विदतम एवं अवस्थितम न तो सुने। कर्ण निरपेक्ष हो गया। और सुखदेव जी बोलते हैं यदंग है नु ध्यान समाधि भवतया या आत्मना तत्त्वम पश्यन्ति। अंग्री अनुध्यान जदंग्री अनुध्यान समाधि भवतया या पश्यन्ति ही तत्त्वमात्मना आत्मना तत्त्वम अंग्री समाधि भवतया या पश्यन्ति।
बुद्धिग्राही होते
देखता है,
बुद्धिग्राही की कमी है।
तो करने तो होगा बुद्धि।
हाँ तो कर्म है तो पहली अवस्था है
आत्मा
तत्व। हाँ तत्व को देखते हैं तो पहली अवस्था है ये आत्मबुद्धि प्रसादम सात्विक सुख है। इसका फल होगा वो कर्म ही होगा। बात आश्री की ये है कि जब कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कैसे रह जाएगा। स्वतंत्र कर्ता जितने कार्य के सब में स्वातंत्र ने विविक्षित हो अर्था करता
नहीं है।
धिया अनुपस्थिति ठीक है तो पश्चिंती दिया ही होगा, बिना कारण के कैसे होगा। देखना तो बिना कारण के होता नहीं ना। साधन करण तो साधक तमाम कारण क्रिया की सिद्धि में साक्षात कारण हो उसका नाम कर्ण है। साधक तमम कर्णम तम दिया तमप
जो क्रिया है इसके सिद्धि में
और पश्चिंती क्रिया में धी है जिसके साक्षी है वह बुद्धि से देखा जाए। जीव मात्र के पास बुद्धि से बढ़कर और कोई साधन नहीं, कोई कर्ण नहीं है, कोई औजार नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। सबसे आगे बुद्धि है। इस वास्ते गीता ने सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो बुद्धिग्राह्य का तात्पर्य सुषुप्ति नहीं है। बुद्धिग्राह्यम तात्पर्य बुद्धि सुषुप्ति नहीं है ये कहना है। आत्यंतिकम कहने का सात्विक नहीं है। बुद्धि कहने से वो सुषुप्ति नहीं है और अतिरिक्त कहने से विषेन्द्र संबंध नहीं है। तो तीन सुखों से अतिरिक्त विलक्षण सुख है उसकी तरफ लक्ष्य ग्रहण तात्पर्य है। बुद्धि के द्वारा ग्रहण और इसमें तात्पर्य नहीं है। बुद्धि के द्वारा उसको पकड़ रहे हैं ये तात्पर्य नहीं है। बुद्धि ग्राह्य उनका बुद्धि की जागृति रहती है। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चाह परे आत्म संयम योग ज्ञान दीपी थी, ज्ञान की दीपिता रहती वहां। सुषुप्ति में और समाधि में बड़ा फर्क यही है कि सुषुप्ति में वृत्ति लीन हो जाती है और समाधि में वृत्ति जागृत रहती है। वो जागृत वृत्ति के लिए वो दिग्राहिम का है। बुद्धि पकड़ सके तो ये चीज है कि जो बड़ी चीज होती है ऐसे पकड़े तो छोटी उसको तो कर सकते हैं, बड़ी वो कैसे पकड़े। तो बुद्धि है वो अपने पास सबसे बड़ी है पर परमात्मा की तरफ से क्या बुद्धि। बुद्धि वास्तव में तो नहीं समझ सकती प्रकृति को। बुद्धि अपने कारण को नहीं जान सकती तो कारण का भी जो साक्षी उसको कैसे जानेगी। तीनों प्रकार के आत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम और अतीन्द्रियम तीन प्रकार का सुख है। उनसे ही विलक्षण सुख है।
बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम जो है ये उसकी अलौकिकता अलौकिकता को बताने के लिए।
हाँ जी उसकी विलक्षणता बताने के लिए। और सुषुप्ति में क्या होता है कि संसार की वृत्ति का अभाव होता है, संसार पर वृत्ति नहीं रहती, लीन हो जाती है वृत्ति, और उसमें वृत्ति लीन नहीं होती, संसार से तो उपलब्धि हो जाती है, परंतु उसको सुख का साक्षात्कार होता है, बुद्धि की जागृति रहती है। कहते देखो तो मन लगेगा ठीक, तो मन ऐसे रहेगा, सुषुप्ति आ जाएगी शरीर गिरेगा, सुषुप्ति भारी अवस्था तुम है ना, तामस वृत्ति है, तो सिर भी ठीक नहीं रहेगा, सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है अविद्या में। हाँ तो विलीन होती है, जैसे नींद में क्या होता है, संसार रहता नहीं है, ये थोड़ी होता है, संसार की तरफ वृत्ति नहीं रहती, अनुभव कैसे हो, वृत्ति रहती नहीं उधर, हाँ सुख का अनुभव होता है, अनुभव रही तो होती है, पर मैं सुख सुख होया, कुछ विक्षेप नहीं था, ये स्मृति है। सुषुप्ति के समय अनुभव नहीं है, जागृत होने पर स्मृति है, और स्मृति होती है अनुभव जन्य होता है, ज्ञान होता है, उसको स्मृति कहते हैं, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, तो स्मृति है ये। और अंत में अर्जुन ने यही कहता, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति हो गई, तो वो है बुद्धि की स्मृति, ये है स्वरूप की स्मृति।
सुषुप्ति छोटी मृत्यु है क्या,
और क्या है, छोटी मृत्यु ही है, सुषुप्ति है वो, प्रलय है वो, और महाप्रलय है वो, ये सब एक जाति की है, सुषुप्ति प्रलय और महाप्रलय और मृत्यु एक जाति है। मानो संसार का अभाव करने में तो मृत्यु में भी यही होता है, विस्मृति में ये होता है। ये तो संसार शरीर से संबंध छूटने को कहते हैं, पिंड प्राण के वियोग को मृत्यु कहते हैं, सुषुप्ति में वियोग नहीं होता, वृत्ति लीन होती है, अब वियोग हो जाए तो शाम को कैसा होगा, ये वियोग हो जाता है, मरना उसी को कहते हैं जो पिंड प्राण का वियोग हो जाए, अब वियोग होने के और भूले होने पर तो याद आ जाए, वियोग होने पर याद आ, देखो एक बात बताओ, आप ध्यान दो, अभी आपके जितना अनुभव हो रहा है, गंगा किनारे एक स्थान है, गीता भवन एक स्थान है, तो इसमें आपकी वृत्ति हो रही है, देख रहे हो, परंतु आप कहीं और चले जाओ, जयपुर चले जाओ, तो जयपुर का अनुभव होगा, ये अनुभव नहीं होगा, तो अपना आप तो एक रहे, कभी जयपुर का किया, कभी हरिद्वार का किया, कभी गीता भवन का किया, तो ये पवन ये बार बार होता है। ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होने पर पहले वाली बात याद नहीं रहती, क्योंकि मृत्यु समय में एक इसका वियोग होते झटका लगता जोर से, जैसे लकवा मार जाए, तो लकवा मारने पर विस्मृति हो जाती, फिर याद नहीं रहती, तो वो भी झटका होता, उससे भी जोर का झटका होता है, मृत्यु के समय पिंड प्राण व्याकुल होता है, वो व्याकुलता में भूल जाते हैं पहले जन्म की बात, और यहाँ से जयपुर जाकर देखो, हरिद्वार जाकर देखो, तो भूलती नहीं पहले वाली, सामने नई बात आती, इसमें थे बरोबर, तथा देहांतर प्राप्ति इसमें बरोबर है, अरे कौमारम यौवनम जरा है, इसमें तो देहांतर प्राप्ति वैसे ही बताई, तो वैसे किस अंश समय है कि उसका संबंध विच्छेद हो गया, इस अंश समय है, परंतु उसकी याद है इस अंश में नहीं है, कौमार यौवनम जरा वृद्धावस्था में भी जवानी की कुमार अवस्था की बात याद रहती है, देहांतर प्राप्ति में याद कहाँ रहती है, तो याद नहीं रहने में कारण क्या हुआ कि वहां पर वो एक विशेष दुख आता है, उस दुख में विस्मृति हो जाती, भूल जाता है, बेहोशी आ जाती है। जैसे धक्को मारने से एक बुद्धि पर धक्का लगता है, बुद्धि आती रही, वृद्धावस्था होने पर भी ऐसा याद ही रहती, जैसी पहले थी वैसी स्मृति नहीं रही। तो ये कारण में फर्क पड़ा, कर्तव्य थोड़ी फर्क पड़ा। तो कर्ता वही रहता है देहांतर प्राप्ति में, तो करना कर्ता वही रहता है। तो कर्ता को एक बताने में तात्पर्य है, तथा बताने में ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था जवान वृद्धावस्था की तरह दूसरे जन्म में बाल्यावस्था में वृद्धावस्था की याद आ जाए, जवानी की याद आ जाए, ये नहीं है। मानो वो स्वयं एक ही होता है। आप जयपुर जाकर देखो, चाहे हरिद्वार जाकर देखो, चाहे यहाँ आकर देखो, आप में फर्क नहीं पड़ता, किंतु सामने दृश्य में फर्क पड़ता है। इसी तरह से सुषुप्ति और जागृत में इसमें फर्क पड़ता है, अवस्थाओं में। आप में फर्क नहीं पड़ता, आप तो वही रहते हैं। तो आप वैसे तादात्म्य करने से उसके साथ आप मिल जाते हो, मिल जाने से उसका अनुभव होता है, पहले का वह याद रहती है। ऐसी देहांतर की प्राप्ति में पहले वाले साथ 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 में एकता नहीं रहती है, अज्ञान एक ही रहता है। परमात्म तत्व का बोध नहीं होना, वो बात तो एक रहती है। प्रलय में, महाप्रलय में, मृत्यु में, वो एक रहती है। परंतु खुद का रहना है, ये एक रहता है। खुद की सत्ता में फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात मैंने कही थी, वो ये बात बताई कि नींद के जगने पर ये नहीं होता है कि इतनी बार इस देर में नहीं था, ये नहीं होता है। मेरे को पता नहीं था पर मैं नहीं था, नहीं होता है। और इस देर संसार नहीं था, ये अनुभव होता है। जगने पर अनुभव होता है कि ये संसार नहीं था, पर मैं नहीं था, ये नहीं होता है। ये एक विलक्षणता है, ये विचार करने से बहुत लाभ की बात है। अपनी अखंडता का अनुभव होता है, अपने स्वरूप की अखंडता है। सुषुप्ति होने पर वो पता नहीं रहता, परंतु जागृत होने पर मैं जो कल जग रहा हूँ वो जग रहा हूँ आज, और वो सुषुप्ति में था, वही स्वप्न में था। वहाँ एक ज्ञान की एक धारा का अनुभव होता है, ये स्वयं का अनुभव है। पर स्वयं का अनुभव है प्रकृति के कार्य को साथ लेकर के, साथ लेकर अनुभव है, उनको महत्व देना है परिवर्तनशील को भी, यही अज्ञान है। और इससे अलग अनुभव करना यही ज्ञान है। तीन तरह से अनुभव करना कि इनके साथ हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसे स्वरूप का अनुभव करना है, वो है तत्व साक्षात्कार। और इनके साथ रहते हुए करता है, ये अज्ञान है। सर्वम ज्ञानम अभ्रांतम, जितना ज्ञान होता सब अभ्रांत होता, भ्रांति होती नहीं। प्रकार ये तो बढ़िया, पर प्रकार में फर्क होता है। इस बात सुषुप्ति में बोध नहीं रहता, परंतु अपना अभाव का अनुभव नहीं होता। वो वैसे जाएगा सुषुप्ति में, स्वप्न में, जागृत में अपना बोध है, वो मिटता नहीं। बोध है ज्यों का त्यों रहता है। अवस्था अंतकरण दिखती है, अज्ञान अवस्था में अवस्था अपनी दिखती है कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था मेरी हुई, और बोध होने पर मेरी अवस्था बदली नहीं, अवस्था अंतकरण की हुई। जागृत अवस्था भी अंतकरण की, स्वप्न भी अंतकरण का, सुषुप्ति भी अंतकरण की।
अमेरिका जैसे विदेशों में मशीन चली है, सुषुप्ति अवस्था में भी कान में लगा दी जाए, और कुछ ढंग से बात बताई जाती है, वो देखने के बाद में उसको याद रहती है।
क्या मैं पूरा सुन लू?
कोई ऐसी मशीन आई है, वो मशीन जी लगा देते हैं, तो सुषुप्ति के बाद उस मशीन के द्वारा कुछ ज्ञान रहता है।
तो मशीन द्वारा ज्ञान हो जाए तो अपने आप तो नहीं हुआ ना। मशीन के द्वारा ज्ञान होगा तो स्मृति ही होगा। ज्ञान कैसे स्मृति होगा? स्मृति तो ऐसे ही होती, मेरे को कुछ पता नहीं था, ये भी स्मृति है। अनुभव तो जो समय में बात हो वो अनुभव अनुभव है, पीछे अनुभव की स्मृति है। हर एक आदमी की याद ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं इसका पता तो था ही, नहीं तो कैसे कहता भाई मेरे पता नहीं था।
उस समय तो ये भी पता नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं
है। हाँ, ये नहीं रहता है। और तो नहीं रहता तो स्मृति में कहता हूँ ना, इस वास्ते उस समय में ज्ञान हो तो ज्ञान कहाँ होगा, वो तो स्मृति है। ऐसे ही मशीन के द्वारा क्या होता है हमारे को तो पता नहीं है, परंतु जितना मैं पक्का जानता हूँ कोई स्मृति है वो। सुषुप्ति के समय अगर बोध हो जाए तो हम समझे भी ठीक बात है। पीछे जो बोध होता तो वो तो सबको होता है। उसमें ये बात है कि वो मशीन है उसको संग्रह कर देती है, जैसे टेप होती है जैसे, और क्या होगा उसमें? वास्तव में तो देखा नहीं है, मैंने ऐसी मशीन देखी नहीं, अनुभव किया नहीं।
सुसुप्ति में कोई स्मृति तो रहती नहीं?
ना, स्मृति नहीं रहती, पर मैंने एक बात कही वो ध्यान देने की, कि आपका अभाव नहीं होता, वृत्तियों के अभाव का अनुभव होता है, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। ये भाव रूप से अपने सिद्धि करता है।
गाढ़ निद्रा सुप्ति में हम भगवान के ज्यादा नजदीक रहते हैं क्या? संसार का तो अभाव रहता ही है।
मैं भगवान के नजदीक तो अभाव है, जैसे उस समय है उस समय जैसे अभाव है। भगवान के नजदीक तो अभी वैसे ही है जैसे गाढ़ सुषुप्ति में होते हैं, वैसे नजदीक रहते हैं। इसको बताया है कि ब्रह्म प्राप्ति रोजाना ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा आता है उपनिषद में आता है। पर वो ब्रह्म की प्राप्ति कैसी? अभी है जैसी है, अभी संसार की दृष्टि होते हुए प्राप्ति है, अभी वह दृष्टि नहीं रहती इस वास्ते प्राप्ति है, वो प्राप्ति वास्ते नहीं है। दो अंश, एक संसार को भूलना और एक परमात्मा को प्राप्त करना, तो वो भूलने अंश में तो बरोबर है, पर परमात्मा की जागृति में बरोबर नहीं है। इधर से वृत्ति हट गई, जैसे हमारी हरिद्वार से जयपुर से वृत्ति हट गई, इधर वृत्ति लग गई, तो उससे वृत्ति हट गई, अभाव थोड़े हो गया उसका, ना हरिद्वार का भाव है ना जयपुर का भाव है। और बोध होने पर तो संसार का अभाव हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न के अभाव का अनुभव होता है, ऐसे जागृत अवस्था में संसार के अभाव का अनुभव होता है। अब वो कैसे बताऊं बताओ? संसार की इतनी विलक्षण बात है, आप ध्यान दो, एक बात याद आई, खूब आप ख्याल करो, संसार इतनी तेजी से बदलता है कि जिसको आप दो बार नहीं देख सकते। ये देखा, इसमें मौत बदल गया, हाथ किसी का हाथ ही दिखेगा सजातीय वृत्ति प्रवाह होने से, परंतु ये रही नहीं चीज। वर्षों के बाद शरीर बदलता है, तो कौन से वर्षों बदलता है, कौन से महीने में, कौन से दिन में, कौन सी घंटे में बदलता है? अंत में बारीकी से देखो तो यही करना पड़ेगा कि प्रत्येक क्षण बदलता है, तो क्षण में बदलता है दूसरे क्षण में वो कैसे रहा? आपने उसको पकड़ लिया, ऐसा दिखता है। आप वीडियो में देखते हैं बायोस्कोप में, उसमें जो आप अनुभव करते हैं सिनेमा में, वो क्या है? इस पर विशेष ध्यान दिया आपने? वो जो चलचित्र होता है, नृत्य करता है एक आदमी, तो नृत्य करता है वो क्या होता है, वे तस्वीर खींचती है उसकी, ऐसे 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 किया ना, तो वैसी तस्वीर खींचती है। अब पहले वाले तस्वीर को पकड़ा कर जैसे सूरज के सामने आप देखो, फिर मीठू तो दिखता है वो, शोभा को देखिए आंख में मीठी तो शोभा दिखती है। ये क्या है, आंख में एक कांच है, उस कांच में प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे कांच में पड़ता है वो प्रतिबिंब है उसको, और सामने उसको एकता कर लेने से वही आदमी नाचता यूं दिखता है। परंतु यूं जो हाथ करना है, यूं हाथ करना है, दो तस्वीर है, एक तस्वीर नहीं है वहां। परंतु आंख से पकड़े रहने के कारण से वो ही आदमी ऐसी क्रिया करता है, ऐसा दिखता है। अब ख्याल में आया नहीं है पता नहीं, मैं कहता हूं आपने ख्याल कर समझा कि नहीं। सिनेमा में जैसे नृत्य करता हुआ आदमी दिखता है तो वही आदमी नृत्य करता है, ऐसा दिखता है, और वो आदमी नृत्य नहीं करता है, किंतु नृत्य की तस्वीर अलग अलग होती है। और फीते पर देखो तो पता लगेगा, यूं एक तस्वीर है, यूं एक तस्वीर है, यूं यूं है, तो वो मैं देखते वही आदमी यूं कर रहा है। उसमें कारण क्या है कि आंख के कांच ने पहली तस्वीर को पकड़ा, अब उसी तर्ज में उसी में ही ये परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से नृत्य दिखता है। तो वो वास्तव में उसमें नृत्य नहीं हो रहा है, आपकी आंख उसको पकड़े रहती है। ऐसे ही आप संसार को पकड़े रहते हो, इस वजह से संसार वैसे ही दिखता है, कल जैसे ही आ जाए, एक क्षण में ही वो नहीं है। क्षण परिणाम जो हमारी स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम है, एक क्षण भी सिर नहीं रहते। तभी तो संसार जन्मता है, जो बालक आप हमें बड़े हुए सब बालक वही है, पर उन्हें बदल गया, कितना बदल गया तो कोई जान नहीं सकते। जन्मते हुए बच्चों को देखे तो दो चार वर्ष होने पर नहीं समझ सकते कोई बालक है। तो ये परिवर्तन कब हुआ, प्रतिक्षण होता है, को भाई हरी काम से मांगो, ऐसे संसार प्रतिक्षण बदलता है। तो इतना क्षण भंगुर भी वही दिखता है, जैसे बायोस्कोप में वो तस्वीर दूसरी, वो तस्वीर दूसरी होने पर वही आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसा दिखता है, इसी तरह से संसार दिखता है। मेरी बात समझ में आती है ना, कम से कम इतना भी बात के द्वारा बात तो समझते हो गए। सिनेमा में दिखता है वो सिनेमा इस तरह से है, ये सिनेमा है, कहते सब बोलती फिल्म है, और बोलती चलती लड़ती सोती बिलाती फिल्म है, क्या बोलते सब कार्य करती फिल्म है। ये तो स्मार्ट क्लिबिंद परम यद गर्भावस्था गर्भावस्था स्थितम चेत रेत चेत एक पानी की बूंद चेतन कर दे रही, मयूरों का अंडा दिया है इसमें योग वशिष्ठ ने। अब मयूर के अंडे में कितने रंग भरे हैं, कितने रंग निकलते हैं, मयूर पैदा होता है, पैर होने के होते होते कितने रंग खिल जाते हैं, कितने रंग खिलते हैं, ऐसे संसार मयूर का अंडा है, इसमें एक और कई खिल जाते हैं। तो ये परिवर्तन होता है प्रतिक्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें परिवर्तन न होता हो, और जब परिवर्तन सिवाय परिवर्तन के और कुछ है ही नहीं। स्थूल दृष्टि से देखने से परिवर्तन स्वयं पात्र होता है, और संसार वही रहता है, वो बदल गया ऐसा, और वास्तव में वो रहता ही नहीं, बात ये है सच्ची, उसी दूसरा आ गया। पर इतनी तेजी से आता है तो ये पता ही नहीं लगता उस देखने वाले को कि ये बदल गया है। दो बार देख ही नहीं सकते संसार की वस्तु को, दो बार नहीं देख सकते, देख बदल देख वो तो बदल गया, आप देखने में देरी लगेगी वो इस बदलने में देरी नहीं लगेगी, इस बात से बोध होने में देरी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, वो तो है ही वैसे ही रहेगा, सब अवस्थाओं वो ऐसे वैसे ही आएगा, और ये बदलगा प्रतिक्षण बदलता है। इसकी तरफ दृष्टि हटती हटती है उसको सुषुप्ति कहते हैं, भूल जाते हैं, इसको सुषुप्ति होती है और परमात्मा स्वरूप का बोध होता है उसको समाधि होती है। तो संसार का भूलना तो सुषुप्ति में और समाधि में बरोबर ही होता है, उधर जागृति जाती है इसमें जागृति नहीं होती, उस जागृति का लक्ष्य है बुद्धि से बुद्धिग्राह्य। सुषुप्ति से विलक्षण बताने में तात्पर्य है, इदंता की तरह नहीं दिखता है। संसार के अभाव मात्र से बड़ी शांति मिलती है। सच्ची पूछो तो अभाव के बिना आप रह नहीं सकते, मानो सुषुप्ति बिना आपके बेचैनी हो जाएगी, परंतु आप जीना चाहते हो शांति चाहते हो तो नींद आवश्यक है, मानो संसार का भूलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मर जाओगे। तो भूलने में भी इतनी शांति आनंद है, अगर इसका ठीक ज्ञान हो जाए अभाव हो जाए तो कितना आनंद है, बहुत मिलेगा। परंतु बिना विश्वास के आपके दस्ती नहीं, अनुभव तो है नहीं, विश्वास करते नहीं, अजय सर अश्रद्धा न संशय आत्मा भी नहीं सकती, ज्ञान नहीं और श्रद्धा विश्वास नहीं, अज्ञ है तो बस विनय। पहले मानना पड़ता है, किसे जानना होता है, और बोलो कोई बोलना तो समय हो गया। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2043 श्री कृष्ण संवत 5216 वैशाख शुक्ल द्वादशी तदनुसार 6 मई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम में हुआ। राम।